जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी जय जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी जय यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी जय यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी जय यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाचार्य श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्रीमद् भागवतम की ताई गौर प्रेम ऑल ग्लोरी स्टेशन बोलती होती ऑल ग्लोरी स्टेशन बोलती होती ऑल ग्लोरी स्टेशन बोलती ऑल ग्लोरी ऑल ग्लोरी ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौर एंड ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जाय मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अध्याय 28 श्लोक क्रमांक 8। आत्मानं कन्यग्रस्त आत्मानं कन्यग्रस्त पञ्चालानरिदूषितान् दुरन्तचिन्तामापन्नो न लेभे तत्प्रतिक्रिया। आत्मानं कन्यग्रस्त पञ्चालानरिदूषितान् दुरन्तचिन्तामापन्नो न लेभे तत्प्रतिक्रियाम्। आत्मानं कन्यग्रस्तं पाञ्चालनरिदूषितान् दुरन्तचिन्तामापन्नो न लेभे तत्प्रतिक्रियाम्। दुरन्तचिन्तामापन्नो न लेभे तत्प्रतिक्रियाम्। आत्मानं कन्यग्रस्तं पञ्चालानरिदूषितान् दुरन्तचिन्तामापन्नो न लेभे प्रतिक्रियाम्। आत्मानं कन्यग्रस्तं पञ्चालन् अनरिदूषितान् दुरन्तचिन्तामापन्नो न लेभे तत्प्रतिक्रियाम्। शब्दार्थ, आत्मानं अपने आप को, कन्यया कालकन्या द्वारा, ग्रस्तं आलिंगित, पांचालन पांचाल, अरिदूषितान शत्रुओं से दूषित, दुरंत अलंग्य, चिंताम चिंता, आपन्न प्राप्त करके, न नहीं, लेभे प्राप्त किया, तत् उसका, प्रतिक्रियाम उपाय। अनुवाद तथा तात्पर्य इसी भक्तिवदान स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की अनुवाद। जब राजा पुरंदर ने देखा कि उसके परिवार के समस्त प्राणी, उसके संबंधी अनुचर, दास, मंत्री तथा अन्य सभी उसके विरुद्ध हो गए हैं, तो वह अत्यंत चिंतित हुआ, किंतु उसे इस स्थिति से छूटने का कोई उपाय न दिखाई दिया, क्योंकि वह कालकन्या द्वारा बुरी तरह परास्त कर दिया गया था। तात्पर्य, जब मनुष्य वृद्धावस्था के कारण निर्बल हो जाता है, तो परिवार के सदस्य, नौकर तथा मंत्रीगण उसकी परवाह नहीं करते, तब वह इसका प्रतिकार करने में समर्थ नहीं रहता, वह अधिकाधिक चिंतित होता है और अपनी दयनीय स्थिति पर पछताता रहता है। ओम अज्ञानते मिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवै नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपरिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तों हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। सबसे पहले मैं राधे श्याम प्रभु जी का और समस्त वैष्णवगण का आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ। मुझे यहाँ पे आज इस भागवतम के श्लोक के ऊपर बोलने के लिए कहा गया है, हालांकि मेरी कोई पात्रता नहीं है एक्चुअली, और मुझे बहुत एंजाइटी भी हो रही थी जब प्रभु जी ने बताया कि आपको देना है, लेकिन फिर भी सब वैष्णवों के आशीर्वाद है तो मैं कुछ भागवतम के ऊपर प्रभुपाद के लाइन में कुछ बताने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पे हम ये श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के जो 28वां जो अध्याय है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि कैसे जो राजा पुरंजर है वो अपने जीवन काल के अंतिम पड़ाव पे पहुंचा है, जहां पे यादि व्याधि उपाधि सब तरह से ग्रस्त हो गया अभी, और इस परिस्थिति में वो अभी अपने जो किए कर्म है उसके ऊपर याद कर रहा है और पछता रहा है, ये मेरे से क्या हो गया, क्या सोचा था क्या हो गया। क्योंकि हमेशा व्यक्ति जो होता है अपने जीवन के जो उच्चतम स्तर पे रहता है तब उसकी कोई अलग ही इच्छाएं आकांक्षाएं सब रहती है, उसे लगता है कि ये दुनिया मेरी मुट्ठी में है, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। पुरंदर तो एक राजा था, हालांकि उसके पास सत्ता थी, उसके पास रिसोर्सिस थे, तो यही सोचता था कि जीवन का जो लक्ष्य है वो है इंद्र भोग करना, इंद्र तृप्ति के पीछे है, वो पूरी अपनी जिंदगी उन्होंने व्यस्त कर दी थी। और आज जब अंतिम पड़ाव पे पहुंचा है, जब काल कन्या उसने अपने कब्जे में उसको ले लिया है, तो यहाँ पे वो क्या हो गए, चेकमेट हो गए। जैसा चेस की गेम रहता है, वो गेम के अंदर दो व्यक्ति खेलते हैं, एक चेस रहता है, और अपने अपने जो अपने अपने रिसोर्सेज अपने अपने जो सैनिक है जो है उससे वो अपने आप को खेलता है, और ये परिस्थिति में खेलता रहता है, लेकिन वो भूल जाता है क्योंकि चेकमेट में दो व्यक्ति रहते हैं, एक है जीवात्मा और सामने बैठा है कौन है, भगवान श्री कृष्ण। वो हर एक इंडिविजुअल के साथ चेकमेट करते हैं, हर एक इंडिविजुअल के साथ गेम खेलते हैं, और खेलते खेलते उसको खिलाते उसको, कभी कभी क्या करता है जो व्यक्ति है जो जीवात्मा है वो भूल जाता है कि मेरा जो मेन लक्ष्य है वो है राजा को बचाना, लेकिन वो राजा को दुर्लक्ष करता है और अपने जो अलग अलग प्यादे है, ऊंट है, वजीर है, घोड़े है, ये सबसे वो खेलता रहता है, और सामने भगवान भी उसके साथ उस तरह से आदान प्रदान करते हैं, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि सही में बाजीगर तो कौन है, भगवान श्री कृष्ण है, वो बाजीगर है, वो कभी भी चेकमेट करेगा और पुरंदर के केस में यही होता है, अपने जीवन के परम जो लक्ष्य था उसको भूल गए, वो अलग अलग प्रकार के ये ऊंट प्यादे, उससे जैसा अपने बीवी है, बच्चे है, अपना संसार है, अपने सैनिक है, अपना राजपाट है, अपने ऐश्वर्य है, वो सबके साथ खिलवाड़ करता है, सबके साथ खेलता रहता है सबके साथ, लेकिन अंतिम क्षण में जब चेकमेट हो जाता है तब दिखता है बाप रे अभी बचाने के लिए कोई है नहीं, न उसके ऊंट, न प्यादे, न घोड़े, न हाथी, कुछ उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं। जैसा हमने देखा था अपना इसके केस में, ये जो चेकमेट हो जाता है तब उसके केस में कोई उसको मदद करने आता नहीं है। तो यहां पे पुरंदर की यह हालत हुई है, क्योंकि वो क्या है, जीवन का जो मेन लक्ष्य है वो भूल गया है, अपने इग्नोरेंस के कारण अपने जीवन के जो मेन चरम लक्ष्य है, मनुष्य जीवन जो मिला है वो जीवन का मेन जो लक्ष्य है, जो हमारी जो असली समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये अलग अलग प्रकार की जो समस्या है, वो समस्या का निवारण एकमात्र मनुष्य जीवन में हम कर सकते हैं। ऐसे तो 84 लाख योनियां है, लेकिन ये कोई भी योनि में ये अपने को फैसिलिटी मिला नहीं है, ये कोई भी योनि में हम उसका उपाय नहीं कर सकते, लेकिन एकमात्र मनुष्य जीवन जो है जिसमें व्यक्ति चाहे तो ये समस्या से निवारण पा सकता है। लेकिन क्या होता है, व्यक्ति जो रहता है वो इस चीज को भूल जाता है कि मैं जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, मुझे किस तरह से अपने आप के अपने जीवन को सुधारना चाहिए, मुझे कैसे परम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि बहुत इग्नोरेंट में होता है। भौतिक जीवन का, भौतिक जगत का ये जो मोड है उससे पूरी तरह से प्रभावित रहता है, ग्रस्त रहता है। सामान्यतः भौतिक जीवन के अंदर सब लोग इसी तरह से इग्नोरेंस में है, मोड ऑफ इग्नोरेंस के अंदर वो व्यक्ति अपने लक्ष्य को भूल गए, और इसकी वजह से वो कभी कभी एक छोटा सा बच्चा रहता है, वो बालक खेलते खेलते कहाँ पे कुछ आग चल रहा है, आग लग रहा है तो वहां पे हाथ डलता है, कभी कभी चलते हुए कोई सांप जा रहा है तो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, कभी पकड़ भी लेता है, उसे मालूम नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, उसका अंजाम क्या होगा, अंततः उससे मुझे क्या परिणाम प्राप्त होने वाला है, उससे वो पूरी तरह से बेखबर रहता है। इसी तरह से वो माया के लिप में सोता रहता है, पूरी तरह से बेखबर है क्या आगे, क्या भय है, क्या मुझे परिणाम मिलने वाला है, उससे मुझे क्या प्राप्त होने वाला है, क्या किस तरह से मैं जल रहा हूं। जैसे हम रोज सुबह में बोलते हैं, संसार दावा नल निडलो का, ये संसार एक दावा नल है, यहां पे हर जगह पे आग लगी हुई है। अब कहीं पे भी जाने का कोशिश करेंगे, जैसे जंगल में आग लगी है, एक जगह पे मैं पढ़ रहा था तो अभी बता रहे थे कि जंगल में आग लगती है तो आग लगने के कारण जो पशु हरते हैं, जो चार पैर वाले जो दौड़ सकते हैं वो भाग जाते हैं, लेकिन जो सांप है वो रेंगता रहता है, वो कुछ बचने का चांस नहीं, क्योंकि चारों तरफ आग है। अब जाए तो जाए कहां, कौन बचाएगा मुझे, क्योंकि चारों तरफ से आग लगी है, तो वो चारों आग के अंदर कोई व्यक्ति बच नहीं सकता। तो यही एक मनुष्य का अंततः स्थिति होती, आग में जल जाता है, सांप के द्वारा डस लिया जाता है, और इस तरह से वो इतने प्रभावित होता है, इस तरह से इतना वो दुखी होता है कि जिसके कारण वो आगे का क्या करना है वो समझ नहीं सकते। पुरंजन की हालत यहां पर यही हुई, अब पछता रहा है। तो एक कवि कहते हैं, अब पछताने से क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया खेत को चुग गई है, अब पछताने से क्या फायदा, अब वो पड़ाव जीवन के अंतिम पड़ाव पे है, अब उसके हाथ में कुछ है नहीं, वो कुछ करना चाहे तो भी नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि अंगम गलितम फलितम मुंडम, है कि नहीं, ऐसी हालत हो गई। वो श्लोक है बढ़िया, बहुत अच्छा श्लोक है ना, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुच्यत आशा पिंडम। अब ऐसा हो गया उसकी हालत, अंग गलितम, उसके जो सब अंग है, जो सेंसेस है, सब वीक हो गए, उसमें कुछ प्रोटेक्ट करने की, प्रोटेस्ट करने की भी ताकत नहीं है। गलितम मुंडम, बाल निकल गए, दसन विहीन जातम तुंडम, मुख में से सब दांत निकल गए, बुढ़ा होने के कारण हाथ में डंडा आ गया। लेकिन फिर भी ये जीवात्मा जो है, आशा पिंडम, हम होंगे कामयाब एक दिन, वो अंतिम क्षण तक उसके लगता है हम होंगे कामयाब, हम इससे जीत लेंगे, हम इस दुख से, एक दरिद्रता से, एक तकलीफ से हम ऊपर उठ जाएंगे। लेकिन उसे मालूम नहीं है कि ये भौतिक दुनिया में संभव नहीं है, क्योंकि भगवान ने इस भौतिक दुनिया की रचना इस प्रकार से की है कि जिसमें आदमी हमेशा झुलसता ही रहता है, जलता ही रहता है, कहीं पे भी जावे, किसी भी प्रकार का आयोजन करे, किसी प्रकार के नए नए वैज्ञानिक खोज कर ले, लेकिन अंततः उसे परेशानी ही प्राप्त होती है, उसे तकलीफ ही प्राप्त होती है। तो ये यहां पे पोजीशन है पुरंदर महाराज की, क्योंकि ये जो लोग होते हैं वो भौतिकतावादी होने के कारण उन्हें इंद्र तृप्ति, इंद्र भोग से कभी भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। जैसा शास्त्र बताते, प्रभुपाद भी बोलता है कि ये आग है, अगर आग के अंदर आप लकड़ी डालेंगे तो आग बुझने वाली नहीं है, आग और जलने वाली है। जितना अधिक भोग उतनी अधिक आग, ये जितना हम भोग करने का प्रयास करते हैं उतनी अधिक भोग करने की प्रवृत्ति जागती है। और ये दुनिया में लोगों को सिखाया जाता है कि ये दिल मांगे, हमको और चाहिए और चाहिए, तो ये दुनिया, ये जो भोग करने की जो प्रवृत्ति है वो जीवन के अंतिम क्षण तक चलती है। और ये अंतिम क्षण तक चलने के कारण क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है ना, वो अपनी जो जीवन का जो चरम लक्ष्य को प्राप्त करने की जो इच्छा है वो उसको खोल देता है। जैसा शंकराचार्य एक बार श्लोक में ऐसा बताते हैं कि बालत तावत क्रीड़ा आसक्त, जब व्यक्ति बच्चा होता है तो किसमें आसक्त रहता है, क्रीड़ाओं में, खेलने कूदने में उसको बहुत आनंद आता है, उसको मजा आता है। उसकी माँ बोला रही, चलो बेटा आओ, खाना का समय हो गया है, आपको खा लो पेट भर के, आप थोड़ा आराम कर लो, नहीं, उसको उसमें टाइम नहीं है, उसको हमेशा खेलने कूदने में। मैं भी देखता था ऐसा, मैं भी बहुत छोटा था, कितनी बार चिल्लाती थी मदर, एक्चुअली मैं कुछ बहुत छोटा था तभी, मेरी ग्रैंड मदर के उधर रहता था, तो पहले के जमाने में तो आज के जैसा था नहीं, मतलब 1967 की बात है, 60-70 के बीच में, तो हम लोग ये मैच बॉक्स आता है ना, उसके ऊपर का जो रहता है ना, उससे या तो सिगरेट के बॉक्स या तो और कुछ गोटिया उसमें भी अलग अलग वेराइटीज आती थी, तो अलग अलग वैरायटी संभाल के रखने का, और इतना जी जान से उसको संभालने का, ऐसा सोते समय भी अपने साथ में लेके जाने का। एक शंकर छाप आता था एकदम ब्लू कलर का, ऊपर व्हाइट, ऐसा भगवान शंकर के ऊपर ऐसा रहता है ना चंद्रमा का, तो ऐसी गोटी आती, वो वेरी स्पेशियस, वेरी स्पेशल गोटी, वो गोटी किसी को देने का नहीं, कभी दाव खेलो या कुछ भी करो उसमें देने का नहीं, ऐसा जितना ज्यादा हो इतना एक्यूमुलेट करने का, मालूम नहीं अभी वो कहाँ है क्या है। लेकिन उस समय इतना एंग्रोस रहने का, इतना चिल्लाने का, मदर मेरी ग्रैंड मदर इतनी चिल्लाने की, लेकिन सुनने का नहीं। बालक तावत क्रीड़ा आसक्त, तरुणी तावत, तरुण तावत तरुणी रक्त, जब व्यक्ति तरुण हो जाता है, बाल्यकला बाल्य अवस्था से युवा अवस्था में आ जाता है, तो तरुणी रक्त, वो एक तरुण एक व्यक्ति एक अपनी स्त्री के पीछे अपने आसक्त हो जाता है, और इतनी आसक्ति हो जाती है कि वो और कोई चीज देख ही नहीं सकता, किसी चीज का उसको ख्याल ही नहीं रहता कि मुझे क्या करना चाहिए, किस तरह से जीना चाहिए। और इसी तरह से वो पूरा तरुणी में आसक्त हो जाता है। लेकिन वो संसार ऐसा है ना, कोई भी परिस्थिति हमेशा रहती नहीं है, छह प्रकार के परिवर्तन चलते रहते हैं, तो हमेशा तरुण अवस्था किसी की रहती नहीं है। हालांकि आजकल तो तरुण रहने के लिए अलग अलग प्रकार के बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स, ये सब संसार में मार्केट में मिल रहे हैं। लोग हमेशा उसके ऊपर रिसर्च करते रहते हैं, अल्ट्रा वायोलेट ना अल्ट्रा ए, ना स्किन प्रोटेक्शन ना ये ना वो, ना क्या क्या चलता है, अलग अलग प्रकार के शैम्पू ना कंडीशन ना, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अलग अलग कैप्सूल्स ना, अपना यौवन टिकाने के लिए बहुत सारी इस ऐसा की प्रोडक्ट सब मार्केट में मिल रही है, जस्ट टू रिमेन यूथ, अपने आप को यूथ बना के रखना है, संभाल के रखना है। कई प्रकार के जिम्स ने, कई प्रकार के तालीम ने, कई प्रकार योगा ने, बहुत सारे सब चलता है। और ये इतना तक चलता है कि लोग अपने बाल पक जाते हैं तो उसको डाई मारते हैं, अलग अलग प्लास्टिक सर्जरी करा लेते हैं, चेहरे की सर्जरी कराते हैं, गले की करा लेते हैं, कई लोग नहीं होता तो भी छुपा के रखते हैं, ऐसा दिखना नहीं चाहिए गले के अंदर, क्यों अपने आप को बूढ़ा दिखाना, वृद्ध दिखाना किसी व्यक्ति को, हालांकि ये मनुष्य का अपना आत्मा का स्वभाव है, वो हमेशा यंग रहता है, लेकिन वो आत्मा है, ये शरीर है, शरीर तो नाशवंत है ही, कभी न कभी उसको झुलसना है, कभी न कभी क्षीण होना ही है, कभी न कभी उसको वृद्धत्व आने वाली है, तो क्यों ना उसका स्वीकार करें, क्यों ना उसको स्वीकार करके उससे पार करने के लिए, उससे मुक्त होने के लिए प्रयास करें। कुछ लोग प्रयास करते हैं लेकिन क्या होता है, वो सुपरफिशियल करते हैं, और इसलिए लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के प्लानिंग करते हैं, अलग अलग प्रकार के जो मेडिसिन से उसका उपयोग करते हैं, लेकिन वो छूटता नहीं। तो इसलिए बोलते हैं तरुण तावत तरुणी रक्त, वृद्धा तावत चिंता मग्न, पारे ब्रह्मणि कपि न लग्न, वृद्धे तावत चिंता मग्न। अपने पुरंदर महाराज की यही हालत है, अभी क्या हो गए, वृद्धे तावत चिंता मग्न, चिंता में पड़ गए, क्या करें, करें तो कैसे करें, जिस लोगों के लिए, जिस मेरे मेरे परिवार के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे समाज के लिए मैंने अपने पूरा जीवन उनको दिया, हमेशा उनकी देखभाल की, उनके उनकी जितनी भी इंद्र तृप्ति की इच्छा थी वो सबको पूरी करने की मैंने कोशिश की, लेकिन वही लोग ने आज मेरे से मुंह मोड़ लिया है, कोई उसके सामने देखने के लिए तैयार नहीं। बहुत भयानक परिस्थिति होती है, और ये भयानक वास्तविकता भी है, जब व्यक्ति में बुढ़ापा आता है वो अपने पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाता है, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए जब वो कुछ यूजफुल या काम का नहीं रहता है तब उसको तिरस्कृत किया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। कभी नहीं सोचा था कि उसने इतना भूतकाल में इतना सब काम किया था, उसको इतना कर लिया था, तो उसको संभालना चाहिए, और पूरी तरह से एकलता में वास चला जाता है। मुझे याद है एक्चुअली अपने जो पहले के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, इतने बड़े व्यक्ति थे, इतने बड़े शायर थे, इतने अच्छा पॉलिटिशियन थे, इधर सौदार्य स्वभाव के थे, कितना नाम ख्याति सब प्राप्त किया था उन्होंने, इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक उन्होंने समझौता बस चालू किया था, बहुत कुछ उन्होंने किया अपने जीवन में, लेकिन आप देखिए लास्ट 10 सालों में अभी अभी उनका देहांत हो गया एक्चुअली, लेकिन पिछले देहांत से पहले 10 साल तक कोई उससे मिला नहीं था, उनकी हालत इतनी खराब थी, हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर करके उनके सब सुविधा थी, सब फैसिलिटी थी, उनके डॉक्टर चाक्टर ये सब थे, लेकिन बाहर का कोई व्यक्ति उसको मिल नहीं सकता था, उनकी हालत ऐसी हुई थी, देखने में शरीर से इसी तरह से इतने पूरी तरह से ग्रस्त हो गए थे, नष्ट हो गए थे, वो कभी सामने आते नहीं, कभी कभी उसकी बर्थडे आती थी तो नरेंद्र मोदी जाके उसको चुपचाप जाके मिल के आते थे, 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति जाके मिल के आ गए, बाकी पब्लिकली वो देखने में नहीं मिलते थे। तो इतने बड़े व्यक्ति, इतने बड़े उसका अचीवमेंट होने के बावजूद भी बुढ़ापा के अंदर उसकी हालत इसी होती, तो हमारे यहाँ पे पुरंदर राजा की भी यही हालत है, बुढ़ापे से त्रस्त है अभी, कालकन्या ने उसको अपना आलिंगन दे दिया है और इस परिस्थिति में अभी उसका ऐसी हालत है कि अभी उसको कोई देखने वाला है नहीं। अपने परिवारजन, अपने 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 जो पत्नी है, अपने बच्चे हैं, अपना अपने जो प्रधानमंत्री सब लोग थे, कोई उसका साथ नहीं रहे, सब उससे विमुख हो गए, सब उसने मुंह मोड़ लिया है। और ये भौतिक जीवन का एक सिद्धांत है, जो अलग अलग सिद्धांत है उसमें एक सिद्धांत है, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच, जब तक आप मुझे खुजलाओगे मैं आपको खुजलाऊंगा, जब तक आप मेरी मदद करेंगे मैं आपकी मदद करूंगा, जिस दिन आपसे मुझे कुछ मदद मिलना बंद हो गया, हरे कृष्णा जी, तुम तुम्हारे रास्ते पे, मैं मेरे रास्ते पे, चाहे वो अपनी खुद की धर्म पत्नी क्यों ना हो, बाकी की बात तो छोड़ो, अपने खुद के पुत्र पौत्र आदि क्यों ना हो, लेकिन वही लोग भी उससे मुंह मोड़ लेते हैं। और आजकल इसलिए तो देखते हैं अलग अलग जगह पे वृद्धाश्रम खोला जाता है, अलग अलग फैसिलिटीज के। हमारे एक पहचान वाले थे, पहचान वाले मतलब गुजराती थे, एक बुढ़े काका थे उसका, कंचन काका करके थे। पहले हम पड़ोसी थे, हम जब रहते थे पूना के अंदर ही, तो हमारे एक पड़ोसी थे वो, उसको 3 बेटे थे, एक एक करके तीनों बेटों अलग अलग हो गए, अंत में वो बूढ़ा बूढ़ी दोनों रह गए। तो बाद में बीबीवाड़ी में वो आ गए रहने को, सस्ते से मकान में, और 75-80 ईयर्स था, लेकिन फिर भी वो के मार्केट के अंदर गेलानी करके एक ये शॉप है, वो गेलानी शॉप के अंदर गुमास्ता मास्टर की नौकरी करते थे। कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई, तो पत्नी के जो भी जेवर थे, दागिने थे, वो सब बेच के उन्होंने उनकी सेवा की, अंततः वो बेचारी मर गई। तो वो व्यक्ति मुझे मंदिर में आता था और कई बार आते थे, हरे कृष्णा करते थे ऐसा, मुझे भी बहुत दुख होता था उसको। बाद में तो वो यहाँ पे के मार्केट के सामने ही रहने को आ गए थे, एक खुले में रहते थे, लेकिन अपना खाना वाना मार्केट किधर से मंगाते थे और काम करते थे। लास्ट में बता रहे थे, प्रभु जी अभी मेरे से कुछ हो नहीं रहा है, कुछ ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो तभी मैंने इंक्वायरी किया था, यहाँ पे नजदीक में कोई वृद्धाश्रम है क्या? तो मुझे सरप्राइज हुआ, अपने बीबीवाड़ी धनकवरी कात्रज एरिया में करीब करीब 8 से 10 वृद्धाश्रम चल रहे हैं। ऐसा पब्लिकली दिखते नहीं है, लेकिन जब हम उसको ढूंढने का प्रयास करते थे, मालूम पड़ा कि इतने सब वृद्धाश्रम अपने नजदीक में चल रहे हैं। ठीक है, वो लोग का अलग टर्म्स एंड कंडीशन रहता है, इतना पैसा भरो आपको ये फैसिलिटी मिलेगा, वो फैसिलिटी मिलेगा, ऐसा करेंगे। वो काका को मैंने बताया था और बातचीत किया था। कहने का मतलब ये, उनको तीनों बेटे यहाँ पे रहते थे, लेकिन उनकी हालत ऐसी थी कि उनको वृद्धाश्रम में जाने की नौबत आ गई थी, कोई बेटे उसको रखने के लिए तैयार नहीं थे। देखिए अभी कैसी हालत होती। हालांकि अभी बहुत दिन हो गया, 6-1 महीना हो गया मेरे से बात नहीं हो उनका। वो बाद में राजकोट चले गए थे गुजरात में, तो वहां से आने वाले थे, लेकिन आए नहीं आए मालूम नहीं। तो ये सब चीज अपने दैनिक जीवन में देखने को मिलता है। पिछले साल ही मेरे पिता का देहांत हो गया, मेरे फादर भी लगभग 88 थे। तो पिछले 2 साल से मैं उनको भी देख रहा था, पूरी तरह से ऑब्जर्व कर रहा था, अपनी इंद्रियों पे कुछ कंट्रोल नहीं रहा था, कभी भी चलते चलते पेशाब हो जाता था। मंदिर में कभी लेके आया तो उनको बहुत टेंशन होता था कि 1 घंटा 1/2 घंटा कैसे गुजारने का बिना पेशाब करे, हाथ पे कंट्रोल नहीं है, सुनने को नहीं हो रहा है, कुछ खाने को अच्छी तरह से नहीं हो रहा है। और इतनी दयनीय स्थिति में देखिए, एक दिन तो सुबह में 4 बजे उनको कुछ पेट में 4-5 दिन से वो ये हो गया था, कब्जियत हो गया था, तो उनको कुछ गोली दिया था मैंने, तो सुबह 3:30 बजे 4 बजे उनको एकदम टॉयलेट आ गया, जाते जाते सब अपने फ्लैट के अंदर ही, मतलब हॉल के अंदर ही उन्होंने सब अपना ये कर दिया था। मैं बाद में उठ के सब साफ किया, लेकिन वो मेरे सामने देख रहे थे, वो इतने वो डिप्रेस लग रहे थे, इतने वो दयनीय स्थिति उनकी थी, बेटा मैंने तेरे से ये सब काम करवाया, ऐसा बोल रहे थे, ऐसा फीलिंग था उसको। वो ऐसा एक्सप्रेस कर रहे थे, उसको लग रहा था कि मेरी कितनी खराब हालत है कि मेरे बच्चे को, मेरे समाज के, मेरे घर के लोगों को मैं इतनी तकलीफें दे रहा हूं, लेकिन कुछ उपाय नहीं है, कुछ उपाय नहीं है। क्योंकि जब तक मौत आती नहीं है हम कुछ नहीं कर सकते, जीवात्मा कुछ नहीं कर। अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक विक्टोरिया करके स्टेट है, तो वहां पे अभी ये निकला है एक नया, वहां के जो मेयर है और वहां के जो कोर्ट है, उन्होंने इच्छा मृत्यु का जो ये है वो पास किया उन्होंने, कि अगर कोई व्यक्ति, उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन बहुत डाला है कि अगर वो बहुत साल से ऐसा बीमार है, उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, उनको कोई देखने वाला नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दे सकते हैं ऐसा। और उसके लिए कुछ 300 डॉक्टर को अभी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा चाहता है तो उसको कैसे मारने का। लेकिन हकीकत है, बहुत दयनीय स्थिति है। उतना छोड़ो, ऐसा नहीं है व्यक्ति बुढ़ापे में ये परेशान होते हैं, बुढ़ापे में लोग उससे मुंह मोड़ लेते हैं। एक अभी लेटेस्ट न्यूज था, कल का न्यूज था, हमको लगता है अभी यहां पे चर्चा करें, पुरंजन तो क्योंकि कलयुग से पहले की बात है करके, उस बुढ़ापे में उसकी हालत ये हुई है। आजकल तो बुढ़ापा क्या, जवानी में भी लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं, धोखा दे देते हैं। कल का ही न्यूज है, प्रिंसेस हया बिन अल हुसैन करके, जॉर्डन के राजा की बेटी है प्रिंसेस हया बिन अल हुसैन, और उसका विवाह, निकाह बोलो, विवाह बोलो, वो जो है शेख मोहम्मद बिन रशीद उल मक्तूम, शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम, जो दुबई के प्राइम मिनिस्टर है, दुबई के प्राइम मिनिस्टर है और यूएई के वाइस प्रेसिडेंट है। उस सेवन जो आइलैंड है, वो सेवन आइलैंड को कंबाइन करके यूएई बना है, यूनाइटेड अरब अमीरात, तो उसका वो वाइस प्रेसिडेंट है। एक्चुअली उसका प्रेसिडेंट ये इसका है, दुबई के बाजू में क्या है तो भूल गया, अबू धाबी, यस, अबू धाबी का जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट है यूएई का, और दुबई का जो दुबई का जो प्राइम मिनिस्टर है, मतलब दुबई का जो राजा है वो ये यूएई का वाइस प्रेसिडेंट है। तो ये जो हया है, अपनी हया बहन, वो ये दुबई के राजा की धर्म पत्नी थी, हालांकि उसका नंबर छठा था, सिक्स धर्म पत्नी थी वो, उसके पहले पांच होके गई थी। तो क्योंकि रिसोर्सेस है ना, राधा वृंदावन चंद्र की। तो एक दिन राजा को सुबह सुबह मालूम पड़ता है कि अपनी धर्म पत्नी, अभी कल का न्यूज है, धर्म पत्नी छोड़ के चली गई, और उसने लंदन में जाके वहां पे आश्रय ले लिया है। कोई बोला ठीक है चली गई तो चली गई, अपन दूसरी लाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इतना ही नहीं, वो 31 मिलियन पाउंड लेके चली गई है, 31 मिलियन पाउंड लेके वो दुबई के राजा की पत्नी, धर्म पत्नी छोड़ के चली गई। तो धोखा कभी भी हो सकता है, हमें बुढ़ापा का इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि बुढ़ापा होगा और लोग मेरे से मुंह मोड़ लेंगे, ऐसा अभी ये कलयुग में पॉसिबल नहीं है। कलयुग में कभी भी कोई भी व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है। तो इसीलिए कहते हैं, कि भाई ये परिस्थिति जो है, क्योंकि व्यक्ति हर तरफ से ग्रस्त है, पूरी तरह से भयभीत है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, जैसा राजा भर्तुरी अपने को कहते हैं ना, भोगे रोग भयम कुले चित्त भयम, वित्ते नृपाल भयम माने दैन्य भयम, बले रिपु भयम रूपे जराया भरम। अगर किसी के पास रूप है तो उसको जरा का भय है, जरा बोले तो बुढ़ापा का भय, क्योंकि वो कभी अपने रूप खोना नहीं चाहते। तो इस तरह से पदम पदम विपद विदार, जो जैसे हम बताते हैं, ये परिस्थिति आजकल यहां पे सब जगह पे है। लेकिन यही राजा भर्तृहरि जो आगे लास्ट में बताते हैं, सर्व वस्तु बयान्वित तू भुवि नृणा वैराग्य एवा अभयम्। सब जगह से भय है लेकिन एक ही जगह पे हमको अभयदान मिल सकता है और वो है वैराग्य। और इसलिए हमारे जो आचार्य है वो बते हैं कि भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद। हे मन तू भजन कर, किसका? जो आपको अभय दान प्रदान कर सकते हैं, ऐसा नंद नंदन का भजन कर तू। किसी का भजन करने से होगा नहीं, क्योंकि वो आपको अभय दान दे सकते नहीं। यहां पे पुरंदर के केस में हम यही देख रहे हैं, उन्होंने बहुत सारा एक्यूमुलेट किया, बहुत सारा रिश्ता बनाया, बहुत सारा के साथ संबंध स्थापित किया, बहुत सब सैनिक रख दिया, मंत्री रख दिए, राजाशाही कर दी, लेकिन अभी लास्ट में उसको कोई बचाने वाला नहीं, कुछ के साथ देखने वाला नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हमें अभयदान चाहिए तो भज हुए रमन श्री नंद नंद अभय चरणारविंद। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान का हरिनाम करते हैं, तो वही एक नाम जो है वो हमें इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम से मुक्त कर सकता है। और यही जीवन का परम लक्ष्य है। अभय चरणारविंद से भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद यही सोच लेके 1965 में यहां से अमेरिका जाते हैं, और वहां पे जाके वहां पे जो लोग थे, जो भयग्रस्त थे, भय से त्रस्त थे, उनको जाके ये उपदेश देते हैं। हालांकि वो अकेले थे, उसके पास कोई रिसोर्सेस नहीं था, कोई साधन नहीं थे, वहां पे कोई पहचानने वाला नहीं था। ऐसा कहते हैं कि जब प्रभुपाद स्टीमर से नीचे उतरे तो उसको मालूम नहीं था कि उसको राइट में जाना है कि लेफ्ट में जाना है, कहां जाऊंगा, क्या करूंगा, लेकिन गोल उनका फिक्स था, जहां पे भी जाऊंगा, जो भी करूंगा, लेकिन मैं भगवान का नाम का प्रचार करूंगा। भगवान के नाम जो है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जब किसी को भी मैं भगवान का नाम दूंगा, निश्चित ही वो भय से मुक्त हो जाएगा, ऐसा दृढ़ विश्वास है। सुदृढ़ विश्वास करिए, सुदृढ़ विश्वास था भगवान प्रभुपाद के हृदय में। उन्होंने अपने आप में, अपने जीवन में उसको रियलाइज किया था, अनुभव किया हुआ था कि अगर ये जीवन मृत्यु से चक्कर से अगर कोई बचा सकता है तो हरि नाम बचा सकता है, और जो कुछ मुझे मिल गए क्यों मैं ना दूसरे को बांटू। ये एक साधु का लक्षण होता है। जो भौतिकतावादी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप में समा के रखते हैं, अगर उसके पास कुछ मिल गए तो वो दूसरे को देने का प्रयास नहीं करता है। वो समझता है कि ये मैं अपने आप के लिए बचा के रखता हूं, उसकी देने की दानत रहती नहीं है। लेकिन प्रभुपाद को मालूम था कि जैसे उन्होंने गोस्वामी ने सिखाया कि भाई भगवान का नाम जो है जिसके द्वारा जीवन की परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है, व्यक्ति का जीवन का जो एकमात्र जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करना है तो श्री नंदन के चरण के अनुवाल के अंदर आश्रय लेना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। और इसलिए प्रभुपाद अपनी ये करुणा के वश अमेरिका जाते और लोगों में प्रचार करते, और उनकी कृपा से आज हम सब यहां पर एकत्र है, नहीं तो राम जाने हम कहां होते थे। तो ये राजा पुरंदर के कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि हमें अपने जीवन के जो भी पड़ाव पे है, चाहे बाल्यावस्था हो, युवावस्था हो या वृद्धावस्था हो, हमें तुरंत भगवान की शरण को ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि जन्म तो हमने ले लिया है लेकिन जरा व्याधि और मृत्यु और आने वाला जन्म, उससे अगर हमें अच्छा करना है, उससे बचना है, तो एकमात्र भगवान के नाम का सहारा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज
अपने परंपरा के ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर का तिरुभाव दिवस है। भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में क्या कहना, महान संत थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक विद्वान थे, बहुत बड़े भक्त थे, अपने जीवन में बहुत बड़ा वैराग्य उन्होंने दिखाया। हालांकि वो संसारी थे, लेकिन संसारी होने के बावजूद भी किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को व्यापन किया और किस तरह से अपने आप को, अपने पूरे परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को भगवान की भक्ति में, भगवान की भक्ति में सब लोगों को लगाया, एक आदर्श उदाहरण है। हम भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में अब दोपहर को निश्चित है हम बहुत ज़्यादा सुनने वाले हैं, जितना भी सुने उनके बारे में कम ही है एक्चुअली, लेकिन अभी हम भगवान के या भक्ति विनोद ठाकुर के चरण में सिर्फ यही प्रार्थना करें कि जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन में कृष्ण को एक समर्पित किया था, कृष्ण को अपने जीवन का जो लक्ष्य बनाया था, उसी तरह से हमें भी कृष्ण के प्रति, कृष्ण की भक्ति के प्रति हमें कुछ रुचि प्राप्त हो, कुछ कृष्ण के प्रति हमें आकर्षण प्राप्त हो, कृष्ण के प्रति हमारी कुछ भक्ति प्राप्त हो, यही हम आज उनके चरण में प्रार्थना करते हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर की, श्री प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की, निताई गौर प्रेमानंद, हरि हरि, हरे कृष्ण।